इस संदेश की श्रृंखला को डॉक्टर बिल माउंस के द्वारा प्रकाशित किया गया है और इसका नाम है बाइबल की 52 मुख्य घटनाएं। और अधिक सामग्री के लिए आप कृपया जाएं www.biblicaltraining.org पर। हबाकूक, आइए प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, हम आपके समक्ष अंगीकार करते हैं कि हमारे अंदर नैसिगर कृति से बल्कि इस प्रकृति संसार की हर वस्तु हमारे ध्यान को आपकी ओर से और सच्चाई से दूर करती है। सृष्टि जो के स्वयं साक्षी है, उसके लिए हम धन्यवादी हैं। आपके विशिष्ट प्रकाशन वचन के लिए हम आपके धन्यवादी हैं। ये चीजें हमें आपकी ओर आकर्षित करती हैं, परंतु हे पिता, शरीर और पाप की शक्ति बहुत ही दृढ़ है और इसलिए इस जीवन के ललायत होना अधिक आसान है बजाय महत्वपूर्ण बात के जाने के आपकी निकटता में बने रहने की अपेक्षा में। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि जब हम हबाकूक के जीवन चरित्र एवं उसके द्वारा उन चुनौतियों का जिनका उसने सामना किया संबंधित बातों का अध्ययन करते हैं और आपके द्वारा उसे विश्वास योग्य बने रहने की बुलाहट के विषय में, काश के हम भी अपने कानों को उसी तरह की चुनौतियों की घंटी बजते हुए सुन सकें। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। परिचय। हबाकूक भविष्यद्वक्ता ने लगभग 640 से 610 ईसा पूर्व भविष्यवाणी की होगी। असूर ने दक्षिण में यहूदा के साम्राज्य के स्थापित होने से 80 वर्ष पूर्व इसराइल के उत्तरी साम्राज्य को जीत लिया था। हबाकूक जहीं से था और उसने गुमावदार जागृति को अपनी आंखों से देखा था, परंतु जब तक हबाकूक के आते आते प्रजा आत्मिक रीति से ध्वस्त होकर बुरी हो चुकी थी। अमीर लोग गरीबों को दबाते थे, इन्हीं लोगों के हाथों में न्याय व्यवस्था थी, किसी भी प्रकार से न्याय का काम नहीं होता था। हबाकूक किसी सुनहरी दुनिया में नहीं जी रहा था। हबाकूक की पुस्तक हमें परमेश्वर के साथ उसके वार्तालाप के विषय में बताती है कि जहां वह रह रहा था जीवन दायन करने योग्य स्थान नहीं था। समानत भविष्य वक्ताओं की पुस्तकों में हम यही पाते हैं कि परमेश्वर भविष्यद्वक्ताओं के माध्यम से लोगों से बातें करते हैं, परंतु इस पुस्तक में हम परमेश्वर व भविष्यद्वक्ता को आपस में परस्पर बातें करते हुए देखते हैं। और इस लघु पुस्तिका को दो बार हबाकूक परमेश्वर से प्रश्न पूछता है और परमेश्वर उसके प्रश्न का उत्तर देते हैं, और फिर तीसरे अध्याय में परमेश्वर के द्वारा दिए गए दो उत्तरों के आधार पर हम हबाकूक के जवाब के विषय में पढ़ते हैं। पूछे गए प्रश्न। प्रथम प्रश्न 1:2-11। प्रथम प्रश्न और उत्तर हबाकूक 1:2-11 पद तक पाया जाता है। इन पदों के अंदर हमें बहुत ही गजब का वाक्यत्व पढ़ने को मिलता है जिसे बुराई की समस्या का नाम की संज्ञा दी गई है। प्रथम पक्ष में यह उत्तर मिलता है कि परमेश्वर धर्मी और न्यायी परमेश्वर है। वह धर्मी को पारितोषिक परंतु बुराई को दंडित करेगा। वह व्यक्तित्व इसमें पाया गया है कि वास्तव में 13वें पद में इसको पढ़ा जा सकता है। परंतु हबाकूक के जीवन में बुराई की समस्या को लेकर उलझन तब पैदा होती है जब वह इस बात पर विश्वास करता है, परंतु जब वह वास्तविकता की ओर से दृष्टि डालता है और उसे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे बुराई की विजय हो रही है, कि परमेश्वर धर्मी को प्रतिफल नहीं दे रहा है, परमेश्वर बुराई को दंडित भी नहीं कर रहा है। और हबाकूक के जीवन में इस बात को लेकर एक बहुत बड़ी अलझन बनी हुई है जो वह परमेश्वर के विषय में देखता है और वास्तव में उसके समय काल के संसार में क्या घटित हो रहा है। हबाकूक 1:2-4। हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा और तू ना सुनेगा? मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव चलाता रहूंगा और तू उद्धार नहीं करेगा? तू मुझे अनर्थ काम क्यों दिखाता है? क्या कारण है कि तू उत्पात को देखता ही रहता है? मेरे सामने लूटपाट और उपद्रव होते रहते हैं और झगड़ा हुआ करता है और वाद विवाद बढ़ता जाता है, इसलिए व्यवस्था ढीली हो गई है और न्याय कभी नहीं प्रकट होता। दुष्ट लोग धर्मी को घेर लेते हैं, इसलिए न्याय का खून हो रहा है। हबाकूक के जीवन काल में यहूदा सुंदर स्थान नहीं था। हबाकूक परमेश्वर से सच्चा प्रश्न पूछता है। वह परमेश्वर के समक्ष अपना हृदय उंडेल रहा है और स्पष्ट रीति से अपने दर्द की दास्तां को बयान कर रहा है, क्योंकि अधार्मिकता और बुराई की हबाकूक से देखी नहीं जाती, इसे उसका हृदय दुखी हुआ है। क्या आपको स्वयं कभी इस प्रकार की परिस्थिति का सामना करना पड़ा है जब आपने अपने या किसी और के जीवन में ऐसी परिस्थिति की निकटता देखी है और आपको मालूम होता है कि वह व्यक्ति तो एकदम झूठा है और आज तक कभी पकड़ा भी नहीं गया है? यही कि इस प्रकार का विश्वासघाती जन किसी भी प्रकार के परिणाम को नहीं झेल रहा है और आप इस प्रकार की परिस्थितियों को देखते हैं और एक राह आपके होंठों से निकलती है, हे परमेश्वर, यह सही नहीं है, यह न्यायचित नहीं है। आप तो धर्मी और न्यायी परमेश्वर हैं, आपने तो प्रतिज्ञा की है कि धर्मी को प्रतिफल देंगे परंतु दुष्टता को दंडित करेंगे। ये सब क्या हो रहा है? तो यह है बुराई की समस्या और हबाकूक को इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो आप देखिए, परमेश्वर हबाकूक की प्रार्थना का उत्तर देता है। बाइबल हमें यह बताती है कि परमेश्वर सदैव लोगों की प्रार्थनाओं का उत्तर एकदम से नहीं दिया करते हैं। रोमियो 9वां अध्याय और अय्यूब की पुस्तक से यह मालूम होता है कि परमेश्वर हमेशा हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं देते हैं, परंतु हबाकूक के विषय में कुछ हटकर है। जिस प्रकार से वह प्रश्न पूछता है वह भी अपने आप में कुछ हटकर है, जिसके कारण परमेश्वर को उसके प्रश्नों का उत्तर देना होता है और परमेश्वर उत्तर देता भी है। परमेश्वर हबाकूक से कहते हैं, मैं यहूदा के पाप को दंडित करने वाला हूं। हाँ, उसे दंडित होना है और यह दंड में उन पर कसदियों की से चढ़ाई करवा दूंगा। बाबुल वासियों को कसदियों के नाम से भी जाना जाता है। बाबुल के लोग आकर चढ़ाई करेंगे, वे यहूदा के दक्षिणी साम्राज्य को ध्वस्त कर देंगे जो कि उनके पापों के दंड हैं। अध्याय 1:5-7 पढ़िए। जाति जाति की और चित्त लगाकर देखो और बहुत ही चकित हो, क्योंकि मैं तुम्हारे ही दिनों में ऐसा काम करने पर हूं कि जब वह तुमको बताया जाएगा तुम उसकी प्रतीति नहीं करोगे। देखो, मैं कसदियों पर उबारने पर हूं, वे क्रूर और उतावली करने वाली जाति हैं जो प्राय वास से स्थानों से अधिकारी होने के लिए पृथ्वी भर में फैल गए हैं। वे भयानक और डरावने हैं, वे आप ही अपने न्याय की बड़ाई और प्रशंसा के कारण है। और बाबल के विषय में वार्तालाप निरंतर जारी है। दूसरे शब्दों में परमेश्वर हबाकूक से कहते हैं, मेरे सबर की एक सीमा है, न्याय और बुराई में बर्दाश्त नहीं करूंगा और समय आ रहा है जब मैं यहूदिया में बुराई को दंडित करूंगा। अब रोचक बात तो यह है कि परमेश्वर हबाकूक को यह नहीं बताते हैं कि वे इस काम के लिए कब अंजाम देंगे। इतिहास हमें यह बताता है कि यह घटना 586 ईसा पूर्व में घटित हुई। शायद हबाकूक ने भविष्यवाणी करने से लगभग 30 वर्ष पूर्व बाबल की सेना नीचे आई और यहूदा के दक्षिणी साम्राज्य को तबाह करके चली गई। हबाकूक को यह नहीं बताया गया कि यह घटना कब होगी। तो परमेश्वर हबाकूक के प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हैं, परंतु समस्या को सुलझाने की बजाय हबाकूक के मानस पटल पर परमेश्वर ने कौतूहल मचा रखा है, क्योंकि हबाकूक के विचार से जितने बुरे यहूदी थे उनसे तो अधिक बुरे बाबुलवासी थे। तो हम अब सीधे दूसरे प्रश्न की ओर पहुंचते हैं जो कि 12वें पद से आरंभ होता है। हाँ, कृपा करके जब आप 12वें पद पर ध्यान दें तो विश्वास देखिएगा। 12वें पद तक विश्वास ही विश्वास नजर आता है। द्वितीय प्रश्न 1:12-2:1, हबाकूक का द्वितीय प्रश्न। हे मेरे प्रभु परमेश्वर, हे यहोवा, हे मेरे पवित्र परमेश्वर, क्या तू अनादिकाल से नहीं है? इस कारण हम लोग नहीं मरने के। हे यहोवा, तूने उनको न्याय करने के लिए ठहराया है, चट्टान तूने उलाहना देने के लिए उनको बैठाया है। तो आप स्वयं देख ही रहे हैं, जय विश्वास बड़ा वाक्य है। हबाकूक स्वयं कह रहा है, ठीक है परमेश्वर, मुझे आपका उत्तर स्वीकार है, यह मेरी समझ में आ गया है कि आप यहूदिया के पापों को दंडित करने के लिए बाबुल वासियों को लाने वाले हैं, परंतु फिर भी मेरी समझ में यह बात नहीं आई है कि आप बाबुल वासियों का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। 13वें पद को देखिए, तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को नहीं देख सकता और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता। आप स्वयं देख ही रहे होंगे कि हबाकूक परमेश्वर की भलाई और सिद्धता में अपने विश्वास को प्रकट कर रहा है। आप बुरे परमेश्वर नहीं हैं, आप तो भले परमेश्वर हैं, फिर तू विश्वासघातियों को क्यों देखता रहता है? और जब दुष्ट स्वयं से अधिक निर्दोष को निगल जाता है तब तू क्यों चुप रहता है? चलिए मैं आपको सही ढंग से समझाता हूं। आप बाबुल वासियों को बेपरवाही से क्यों देखते हैं? जब वह दुष्ट बाबुल वासी यहूदिया को निगल जाते हैं, जहां तक कि हालांकि वह बुरे हैं, फिर भी वे इतने बुरे भी नहीं हैं जितना के बाबुल वासी हैं। आप हबाकूक की समस्या को देख पा रहे हैं? आप मात्र बुरे को दंडित करने के लिए इतने खराब का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? इसलिए परमेश्वर के प्रथम उत्तर ने हबाकूक को और भी अधिक उलझन में डाल दिया है। तो 2:2 और उसके बाद परमेश्वर का उत्तर सामने आता, विशेषकर 3 में परमेश्वर हबाकूक को बताते हैं, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरना इसके पूरे होने का समय वेग से आता है और इसमें धोखा ना होगा। दूसरे शब्दों में परमेश्वर यह कह रहा है, मैं तुझे बताने वाला हूं कि मैं क्या करने वाला हूं। मैं तुझे एक दर्शन के माध्यम से बताऊंगा कि मैं क्या करने वाला हूं और दर्शन पूरा होकर रहेगा। जो मैं कह रहा हूं वह घटित होने वाला है। आपको बाइबल का काव्य विचार अच्छा नहीं लगता क्या? आपके लिए इस बात को समझना बहुत ही आवश्यक है। परमेश्वर कहते हैं, मैं तुझे बताऊंगा कि क्या होने वाला है और इसका होना निश्चित है। अगर ऐसा लग रहा है कि धीमी गति से हो रहा है तो इसकी प्रतीक्षा कर, यह होकर रहेगा, इसमें विलंब नहीं होगा। परमेश्वर कह रहे हैं, मैं तेरे प्रश्न का उत्तर देने वाला हूं, मैं बाबुल वासियों की सुधि लेने वाला हूं, परंतु मैं इसे तभी करूंगा जब इसे करने के लिए मैं तैयार हूंगा। जब तक उन बातों को होते देखते हैं जो न्यायोचित नहीं है, तो हम एकदम उछल कर न्याय करने की सोचते हुए यह कहते हैं, परमेश्वर आपको इसका इलाज करना ही होगा और आपको इसे इस तरीके से करना होगा। हाँ हाँ, आपने तो इस काम को कर ही लिया होगा। यही है हमारी विचारधारा इस मुद्दे को लेकर। परमेश्वर कहते हैं, हे हबाकूक, मैं इस समस्या से निपटने वाला हूं, परंतु मैं इसे तब करूंगा जब मैं इसे करने को तैयार हूंगा। और तेरा काम है धीरज धरना, और मेरा काम है कि जिसे मुझे करना है उसे सही समय की प्रतीक्षा करना। फिर अध्याय 2 के 6वें पद में आगे 5 श्रापों की एक श्रृंखला है, जहां पर परमेश्वर इस बात को स्पष्ट कर देता है कि एक बार उसने बाबुल वासियों का यहूदिया के पापों के लिए दंडित करने के लिए इस्तेमाल किया है, अब दाहिनी और मुड़कर बाबुल वासियों के पापों का कारण उनका भी नाश करेंगे। परमेश्वर सचमुच धर्मी व न्यायी परमेश्वर है, जो कि धार्मिकता को पुरस्कृत करते हैं और पाप को दंडित करते हैं। जब भी ऐसा करने के लिए परमेश्वर तैयार हों, वह ऐसा करके रहेंगे। एक बार फिर हमें यह मालूम होता है कि यह सब घटित होने का समय हबाकूक को नहीं बताया गया है। हम इतिहास के द्वारा जानते हैं, जैसा 539 ईसा पूर्व घटित हुआ है, बाबुल वासियों के द्वारा दक्षिणी साम्राज्य को ध्वस्त करने के 47 वर्ष उपरांत उनको भी पराजित कर दिया गया था, और यह एक राष्ट्र के नाते वह नष्ट कर दिया गया था। स्थिति के विषय में सबसे रोचक बात यह है कि शायद हबाकूक इस घटना को कभी भी अपनी आंखों के सामने घटित होते हुए नहीं देख सका था। बाबल साम्राज्य को उसके पाप के लिए दंडित होने से पूर्व ही शायद हबाकूक मर गया था, और फिर भी उसे कहा गया था कि इस बात पर विश्वास करे कि परमेश्वर उन्हें उनकी बुराई के लिए भी दंडित अवश्य करेंगे। मुख्य केंद्रित प्रश्न, अपरोक्त तथ्य हबाकूक की पुस्तक में उठे केंद्रित प्रश्न कि परमेश्वर संबोधित व ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के रूप में है। हबाकूक की पुस्तक का केंद्रीय प्रश्न यह है कि समो के मध्य आप कैसे जीवन व्यतीत करते हैं, वर्तमान समय में आप किस प्रकार जी रहे हैं। एक तरफ तो कुछ निश्चित बातें हैं जिन्हें हम जानते हैं, हम जानते हैं कि परमेश्वर पवित्र है, परंतु वहीं दूसरी ओर हम अनुभव की ओर दृष्टि डालते हैं या देखते हैं कि अभी धर्मियों को पुरस्कृत नहीं किया गया है, जब पूरी तरह से प्रतिफल नहीं दिया गया है। हम यह भी जानते हैं कि बुरे लोगों को अभी दंडित किया गया है या फिर पूरी तरह से उन्हें दंडित नहीं किया गया है। तो यह दो पहलू हैं, यही तो प्रतिज्ञा है और पूरा होना भी यही है। परमेश्वर के विषय में कुछ निश्चिंत बातें हैं जिन्हें हम जानते हैं कि वह एकदम सत्य है, वह धर्मी और न्यायी परमेश्वर है, और फिर भी हम अपने अनुभवों में धर्मियों को पुरस्कृत होते हुए नहीं देखते हैं, हम बुराई को भी दंडित होते हुए नहीं देखते हैं। तो फिर प्रश्न यह उठता है कि हम वर्तमान में किस प्रकार जी रहे हैं, हम समों के मध्य किस प्रकार जीते हैं। इस बात के मध्य जो परमेश्वर ने कहा उसे वह पूरा करेंगे, वह अपनी कही बात को कब पूरा करते हैं। बात समझ में आई या नहीं, मैं इस बात में संघर्ष कर रहा हूं कि किस प्रकार से इस बात की स्पष्ट रीति से इसे मैं समझ सकूं। आज जब मैं आप अपने घर में जाएं, कृपया एक दूसरे से बातचीत कीजिएगा, अपने बच्चों से बात कीजिएगा, कोशिश कीजिए कि वे प्रतिज्ञा एवं पूरा होने की इस विचारधारा को समझ सकें, वे समझ सकें परमेश्वर के चरित्र और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को और उनके पूरा होने को, और यह भी जान सकें कि इनके मध्य जीवन किस प्रकार व्यतीत किया जाता है। कृपया इस बात को निश्चित रूप से जानिए कि आप स्वयं इस तथ्य को समझते हैं। उदाहरण के लिए, आप इस परिस्थिति के मध्य किस प्रकार जीते हैं जब आप स्कूल जाते हैं और अनैतिक जीवन जीने वाला आपके सहपाठी पर सभी का ध्यान होता है, जो कि शालीन विद्यार्थी होता है और उसकी और कोई भी ध्यान नहीं देता है। इस प्रकार से जिस समय जय जिया जा रहा है, इस प्रकार का जीवन इन हालातों के मध्य जिया जा रहा है। आप सोमवार को अपने काम पर जाएं और शायद आप देखें कि सबसे अनैतिक जीवन जीने वाले व्यक्ति को उच्च पद से सम्मानित किया जाने वाला है, और इसके विपरीत कठिन परिश्रमी व नैतिक जीवन जीने वाला व्यक्ति अन्य लोगों के साथ बैठा है, चू चू कर रहा है। कुछ देर पहले हमने गीत गाया, हम टूटे हैं आप चंगाई देने वाले हैं। यह सब जीवन के शोर पर गठित हो रहा है, और जब हम जीवन को बहुत ही निकटता से देखते हैं, किशोर अवस्था प्रवेश कर चुकी बेटियां प्रतिदिन कष्ट से गुजर रही हैं। हम ऐसे लोगों को भी देखते हैं जिनके पैरों तक रक्त संचार नहीं हो रहा है, अंततः उनके पैरों को काट देना पड़ता है, और हम ऐसे हालातों के मध्य जीना ही है तो आप भले सामर्थी धर्मी और न्यायी परमेश्वर कैसे हो सकते हैं, जबकि प्रतिदिन के जीवन में हम इस प्रकार की अप्रिय घटनाओं का सामना कर रहे हैं। यह सब हो रहा है और इसके मध्य हम जीवन कैसे व्यतीत कर सकते हैं, इस प्रकार के तनावपूर्ण वातावरण में हम कैसे जी सकते हैं। हबाकू की पुस्तक का यह मुख्य केंद्रीय प्रश्न है और शायद इसीलिए आपको इस पुस्तक को चिन्हित करके बार बार पढ़ना चाहिए। निष्कर्ष, पुस्तक का मुख्य केंद्रीय उत्तर। हबाकू की पुस्तक में अध्याय 2-4 पद में उत्तर मिलता है। ऐसा लगता है कि संपूर्ण पुराने नियम में 10 उच्च पदों में से यह एक उच्च पद है। नए नियम के मुख्य केंद्रीय पदों में से 3 बार इसका हवाला दिया गया है। 2 बार पॉलस के द्वारा परमेश्वर के विषय में अत्यधिक महत्वपूर्ण वार्तालाप के लिए प्रयोग किया गया है। यह पुराने नियम के आलोचनात्मक विकट पदों में से एक है। परमेश्वर हबाकूक से कहते हैं, देख उसका प्राण, जिसका अर्थ है बाबल का प्राण, उबारा गया है। उसका प्राण सीधा नहीं है, परंतु धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। धार्मिकता का जीवन उस व्यक्ति का जीवन जिसकी चाल परमेश्वर के साथ सही है, उसे यह कहकर चित्रित किया गया है कि विश्वास से तर और भीगा हुआ। और यह हमारा विश्वास ही है जो हमें परमेश्वर के ऊपर हमारे विश्वास और ज्ञान के विषय में और जो भी हम प्रतिदिन घटित होने वाला है उसे देखते हैं, ऐसे तनावपूर्ण हालातों में भी जीने की योग्यता प्रदान करता है। आइए कुछ क्षणों के लिए विश्वास के विषय में बात करते हैं। मेरे विचार में आमतौर पर जब हम विश्वास की बात करते हैं तो यीशु मसीह के अनुयायी बन जाने से हमारा आशय होता है। जब हम विश्वास के विषय में बात करते हैं तो हम अक्सर यही बात करते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर के साथ मेरा संबंध सही हो गया है। ठीक है, हम ऐसा मानते हैं कि आप अपने कर्मों के द्वारा परमेश्वर के साथ सही संबंध नहीं बनाते हैं। हम ऐसा विश्वास भी नहीं करते हैं कि कुछ कामों को सही ढंग से करने के द्वारा परमेश्वर के साथ हमारा सही संबंध हो जाता है। हम अपने हाथों में अपने भले कामों को लेकर सलीब की शरण में नहीं आते हैं और कहे, देखिए कि प्रभु मैं कितना भला हूं, मैं तो अपने पड़ोसी से लाख गुना अच्छा हूं। जब मैं छोटा बच्चा ही था तो मैंने 1-2 बार 200 रुपए का दान भी दे डाला था। जी हाँ, हम सलीब की शरण में अपने साथ अपने भले कामों को लेकर नहीं आते हैं। वे तो कार्य मात्र ही हैं और एक दिन वे सब नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि अपने प्राण के बदले में हम ऐसा वैसा कुछ नहीं दे सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि हम सलीब की शरण में आए हैं, मसीह के पास आए हैं और ऐसा विश्वास करते हैं कि हम परमेश्वर के अनुग्रह को किसी भांति कमा नहीं सकते हैं, क्योंकि आप ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। परंतु हाँ, यह तभी होता है जब हम यह मान लें कि हम पापी जन हैं। हमें अपने पापों से पश्चाताप करने के लिए कहा गया है, क्योंकि हम परमेश्वर से अलग किए गए हैं और इसीलिए हम बस यह विश्वास करते हैं कि सलीब पर यीशु मसीह का बलिदान हमारे पापों का दाम चुकाने के लिए पर्याप्त है। जब हम यह विश्वास के विषय में सोचते हैं तो आमतौर पर यही संदर्भ होता है और हम यही सोचते हैं। बल्कि पौलुस इन पदों से इसी बात को निकालकर हमारे समक्ष रखते हैं। जब पौलुस हबाकूक 2:4 का हवाला रोमियो 1:17 और गलातियां 3:11 में देते हैं तो वह इसी मुख्य बिंदु पर प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर के साथ हमारा सही संबंध हमारे कर्मों के द्वारा नहीं होता है, बल्कि हमारे उस पर विश्वास के द्वारा होता है, क्योंकि हम सलीब पर यीशु के द्वारा दिए गए उद्धार के कार्य पर विश्वास करते हैं। परंतु जब परमेश्वर हबाकू को उत्तर देते हैं तो उस उत्तर में इतना ही नहीं बल्कि उससे भी बढ़कर है। आप ध्यान देंगे कि आपकी बाइबल में नीचे टिप्पणी करते हुए कहा गया है, जहां विश्वास योग्यता। इब्रानी भाषा में इस बात के 2 अर्थ हैं। प्रथम यह कि धर्मी जन, स्त्री हो या पुरुष, आपकी विश्वास योग्यता के द्वारा जीवित रहेगा। प्रथम यह है कि धर्मी जन, स्त्री हो या पुरुष, अपनी विश्वास योग्यता के द्वारा जीवित रहेगा। तो इस बात का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है, हाँ, हम विश्वास के द्वारा यीशु मसीह के अनुयायी बन जाते हैं। इस प्रकार से उसके द्वारा हमारा संबंध स्थापित हो जाता है। आस्था रखने से, विश्वास करने से, जो वह अपने विषय में कहता है कि वह है, वह उसे पूरा करेगा जो वह कहता है। परंतु फिर भी हमें उसके प्रति हर दिन विश्वास योग्य जीवन जीना अवश्य है। आपको अंतर समझ में आ रहा है या नहीं? हम यीशु मसीह के अनुयायी विश्वास के द्वारा बनते हैं। हम यीशु मसीह के विषय में निश्चिंत बातों पर विश्वास करते हैं, परंतु फिर वही विश्वास हमारे जीवन के द्वारा इतना फैल जाता है कि जब हम समस्याओं की ओर दृष्टि डालते हैं और इस जीवन की उलझने जिन्हें हमें ना समझ पाते हैं, हम तब भी परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहते हैं। और जब हम समस्याओं की ओर देखते हैं तो हम कहते हैं, यह सब अभी मेरी समझ से बाहर है, परंतु मैं विश्वास से जीऊंगा कि हे परमेश्वर, आप धर्मी और न्यायी परमेश्वर और निष्पक्ष हैं और आप अच्छे और आप ही सामर्थी हैं। और इस प्रकार से प्रतिदिन यीशु मसीह पर आपका विश्वास, आप अपने विश्वास की पुष्टि करते हैं, परमेश्वर पर अपने विश्वास की पुष्टि करते हैं और इस प्रकार हम उसके प्रति विश्वास योग्य बने रहते हैं। दूसरे स्थान पर जहां हबाकुक 2:4 का हवाला दिया गया है वह है इब्रानियों 10वां अध्याय और इब्रानियों 10 में लेखक साफ रीति से अपनी बात रखता है। इब्रानियों की संपूर्ण पुस्तक सर्वधर्म त्याग के विषय में प्रकाश डालती है। इस पुस्तक मसीही विश्वास में भटकने वाले संबंध हैं, स्ताव के कारण विश्वास का त्याग कर रहे हैं। जहां इब्रानियों में परमेश्वर के विषय में ज्ञान कूट कूट कर भरा है, वहीं दूसरी और व्यवहारिक सत्य पर भी जोर देती है कि तुम्हें हर प्रकार से स्ताव को सहना ही है, तुम्हें विश्वास योग्य जीवन निरंतर जीना ही है। इस बात का हवाला 10:38 इब्रानियों में दिया गया है, परंतु इस बात का संदर्भ 36वें पद से आरंभ होता है। इसलिए अपना हयाव ना छोड़ो ताकि जब तुम परमेश्वर की इच्छा पूर्ण कर सको तो तुम्हें उसका प्रतिफल मिल सके जिसकी प्रतिज्ञा की गई है। लेखक हबाकुक 2:4 का हवाला देता है और फिर 39वें पद में कहता है, परंतु हम हटने वाले नहीं हैं कि नाश हो जाएं, परंतु विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। इब्रानियों की पत्री का लेखक समझता है कि पौलुस भी ठीक समझा कि हबाकुक 2:4 में प्रारंभिक विश्वास के मुद्दों से बढ़कर निहित है, परंतु प्रारंभिक विश्वास का मसला हमारे जीवन में कुछ इस तरह से फैल जाए कि प्रतिदिन यह हमसे सहन करने की मांग करता है, उसी में बने रहना है, परमेश्वर पर विश्वास करते रहना है, विश्वास करते रहना और इसको त्यागना नहीं है। धर्मी जन विश्वास ही से जीवित रहेगा, धर्मी जन विश्वास योग्यता से ही जीवित रहेगा। आपको इसमें अंतर समझ आ रहा है या नहीं? शायद यह उन बातों में से एक बात है जो कि बहुत ही विशिष्ट है, जिस पर आपको कुछ समय के लिए विचार करना आवश्यक है। हबाकुक का उत्तर 3 अध्याय में दिया गया है। वह कहता चला जाता है, वहां पर निर्गमन का विवरण दिया गया है तथा निर्गमन के दौरान परमेश्वर के बचाव कार्य की चर्चा की गई है। और फिर जब आप हबाकुक 3:16 के दूसरे भाग में पहुंचते हैं तो आपको विश्वास के संबंध उसका स्पष्ट व्यक्तित्व दिखाई देता है कि मैं प्रतिदिन परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखूंगा, चाहे मुझे कुछ भी दिखाई दे मैं परमेश्वर के प्रति निरंतर विश्वास योग्य बना रहूंगा। और हबाकुक कहता है, मैं शांत मन से प्रतीक्षा करूंगा। वही शब्द जो हमने 2:3 में पढ़ा था यहां पर प्रयोग किया गया है। हां, मैं शांत होकर हम पर आक्रमण करने वालों पर विपत्ति आते हुए देखूंगा। बाबुल वासियों पर विपत्ति को आते हुए देखना जो के यहूदिया पर आक्रमण करने वाले हैं। मेरे विचार से परमेश्वर ने हबाकुक को उत्तर इसलिए दिया क्योंकि वह इस संपूर्ण पुस्तक में हबाकुक को विश्वास में दिखाया गया है, जिसके मन में परमेश्वर के विषय में बहुत ही निष्कपट प्रश्न है और वह समझना चाहता है, क्योंकि बुराई की उपस्थिति से बहुत ही पीड़ा उत्पन्न होती है। और फिर वह विश्वास में स्थिर है और परमेश्वर उसको उत्तर देते हैं और हबाकुक विश्वास में उत्तर देता है और कहता है, ठीक है, मैं शांत होकर प्रतीक्षा करूंगा। मैं विश्वास करता हूं कि आप वही हैं जो आप कहते हैं कि हैं, और मैं हूं जो आप कहते हैं कि वही आप करने वाले हैं, आप वो करते हैं। और हबाकुक ने कभी भी परमेश्वर को अपनी दूसरी प्रतिज्ञा को पूरी करते हुए नहीं देखा, और फिर भी वह शांत होकर प्रतीक्षा करना चाहता है क्योंकि वह विश्वास करता है कि जो परमेश्वर ने कहा है वह उसे पूरा करेगा। और फिर पुराने नियम में 2 बहुत ही महानतम पदों में से 17वां और 18वां पद हबाकुक भविष्य में आने वाले फसल के नुकसान को बांप लेता है, जिसका आना निश्चित है। और जब बाबुलवासी आकर उसको कहते हुए सुनते हैं, चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगें, ना दाखलताओं में फल लगें, चाहे खेत में अन्न ना उपजे, भेड़ शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहें, ना थानों में गाय बैल हों, दूसरे शब्दों में यह कहा जाए कि चाहे हालात कितने भी बदतर क्यों ना हों, परमेश्वर चाहे कितने भी खराब पड़ले क्यों ना आ जाए, चाहे वे हमारे खेतों का कुछ भी कर दें, चाहे वे हमारे पशुओं के साथ कैसा भी व्यवहार ना करें, यह कृषि संबंधित आर्थिक परिस्थिति है कि नहीं, यह है उनका जीवन। और हबाकुक कह रहा है, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं कि परिस्थिति कितनी भी बुरी हो जाए, फिर भी मैं परमेश्वर में आनंदित होऊंगा और मैं अपने उदारकर्ता परमेश्वर में मगन रहूंगा। हबाकुक का विश्वास निष्क्रिय नहीं है, किसी भी प्रकार के पद त्याग का प्रश्न ही नहीं उठता है, बाग्यवाद की और कोई इशारा नहीं है, यह क्रियाशील है। वह कहता है, मैं तो आनंदित होने वाला हूं, मैं तो मगन रहूंगा। हबाकुक के जीवन में यह हो रहा है कि विश्वास ने उसे स्वतंत्र कर दिया है, बै की बेड़ियां टूटकर गिर गई हैं और वह स्वतंत्र हो गया है। जय निष्क्रिय होकर यह नहीं कहता, ठीक है परमेश्वर, मेरे विचार से आप अपनी इच्छा को पूर्ण करेंगे तो मैं बैठकर देखता रहूंगा। हबाकुक के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है, परंतु दुरुस्त आपदा के क्षणों में भी वह परमेश्वर में आनंदित रहने वाला है। वह परमेश्वर अपने उदारकर्ता में मगन रहेगा। कठिन परिस्थितियों में भी वह हंसता हुआ नजर आएगा। वह कहेगा, तो क्या हुआ, तो हे बाबुलवासियों, क्या फर्क पड़ता है, मैं तो अभी भी विश्वास करता हूं और मैं विश्वास योग्य बना रहूंगा। यीशु के अनुयायियों से आधारभूत अपेक्षित बातें। परमेश्वर अपने अनुयायियों से किस बात की अपेक्षा रखते हैं? वह कौन सी प्राथमिक आधारभूत बातें हैं जिन्हें परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है। हमारे अस्तित्व के मूलधार पर परमेश्वर अपने अन्यायियों से किस बात की अपेक्षा रखते हैं। यही कि हम अपने परमेश्वर के प्रति अपने हृदय में अच्छा अनुभव करें और स्वयं के बारे में भी अच्छा अनुभव करें। कृपया कोई कहे नहीं धन्यवाद जी, हमें तो गिरजाघर जाना चाहिए, नहीं अपनी बाइबल को पढ़ना है, नहीं सही बातों पर विश्वास करना है, नहीं नहीं अच्छे कामों को करें और बुरे कामों को करना छोड़ दें, नहीं। जैसा भी अच्छी बातें हैं, जे वे बातें हैं जो हमारे जीवन को चित्रित करती हैं, परंतु इनमें से कोई भी प्राथमिक आधारभूत मूल किस्म की बात नहीं है जिसकी अपेक्षा परमेश्वर हमसे और आपसे करता है। सबसे प्राथमिक आधारभूत बात जिसकी अपेक्षा परमेश्वर हमसे करता है वह यह है कि आपके और मेरे हृदय में उसके प्रति विश्वास हो। इब्रानियां 11 की 6, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव, कठिन असंभव है। गिरजाघर में वो हमारी उपस्थिति, सही कार्य करना, अनुचित कार्यों को ना करना, बाइबल अध्ययन करना, अगर यह सब बातें करते हैं परंतु हृदय से विश्वास नहीं करते हैं, यदि हम प्रतिदिन परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य नहीं है तो इस बात से हमारा परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है, क्योंकि विश्वास ही है जो हमारे विश्वासी जीवन स्तर का आधार और बुनियाद है। परमेश्वर आपको और मुझको विश्वास करने के लिए बुलाता है, चाहे कुछ भी हो जाए। इस बात का विश्वास करना ही है कि परमेश्वर धर्मी और न्यायी है। यह विश्वास करना है कि वह धर्मियों को प्रतिफल देगा और बुराई को दंडित करेगा, और यह भी विश्वास करना है कि परमेश्वर के मार्ग सदैव उत्तम हैं, और फिर प्रत्येक दिन उसी की शरण में जीवन यापन करना है, चाहे हमारे सामने जीवन और इसके मार्ग कैसे भी बाधाएं पैर पसार कर खड़ी क्यों ना हो जाएं। हमारा उत्तर हो, हे परमेश्वर, अभी यह बात मेरी समझ से बाहर है, मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया है, मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, परंतु हां मैं विश्वास करता अथवा करती हूं कि आप भले सामर्थी धर्मी और न्यायी परमेश्वर हैं, और मेरे लिए इतना जानना ही पर्याप्त है। आयूब को भी परमेश्वर ने यही उत्तर दिया था। खैर छोड़िए, एक बात सदैव स्मरण रखें, परमेश्वर के न्यायालय कक्ष की प्रत्येक बात आयूब को नहीं समझाई गई थी। परमेश्वर ने कहा था, क्या मैं पर्याप्त हूं, और आयूब की ओर से उत्तर आया था, हां परमेश्वर आप पर्याप्त हैं। इब्रानियों 11वें अध्याय के पहले पद में यही बात हो रही है। विश्वास के विषय में यह बहुत ही प्रमुख अध्याय है। जब इब्रानियों का लेखक पुराने नियम के विश्वासी दिग्गजों की सूची देते हुए उनका वर्णन करता है, और 11वें अध्याय को इस प्रकार से आरंभ किया गया है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। यही तो परमेश्वर हमसे चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवनों को संपूर्ण आश्वासन व पूरी निश्चयता के साथ जिए, चाहे होने वाली बातें हमें नजर भी ना आए। जय है वो मूल बातें जिसे हमें अन्य बातों की बजाय देखकर परमेश्वर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। परंतु जैसे जैसे आप इब्रानियों 11वें अध्याय में विश्वासी दिग्गजों की सूची पढ़ते हैं, तो साथ साथ विश्वास के कुछ उदाहरणों पर भी दृष्टि डालिएगा। हाबिल ने परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया, हनोक को मृत्यु ना आई, नूह ने जहाज बनाया, दिन रात मेहनत करके साल पर साल बीत गए, फिर अंत में उसने जहाज के भीतर प्रवेश किया। अब्राहम अपना घर छोड़कर निकल पड़ा, सारा ने विश्वास किया कि वह पुत्र को जन्म देगी। अब्राहम अपने इकलौते पुत्र को बलि देने के लिए तैयार हुआ, क्योंकि वह विश्वास करता था कि परमेश्वर उसे मुर्दों में से जीवित करेगा। याकूब को विश्वास था, उसने अपनी संतानों को आशीष दी। यूसुफ को विश्वास था, तभी उसने कहा कि उसकी हड्डियों को मिस्र से ले जाया जाए, जब अंततः परमेश्वर इसराइल की संतानों को वाचा के देश में लेकर गया। यह सब उदाहरण है उस विश्वास के नहीं जिसे हम उदार करने वाले विश्वास की संज्ञा देते हैं, वो विश्वास भी नहीं जिससे हम यीशु के अनुयायी बनते हैं, परंतु यह सब दिन प्रतिदिन के जीवन के दैनिक उदाहरण है। जब हम जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं, जब हम जीवन में सब अच्छा और भला होता हुआ नजर ना आ रहा हो, तो भी हम कह उठते हैं, मैं विश्वास करता हूं, मैं अपने परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य पात्र बना रहूंगा। यह स्वतंत्र करने वाला विश्वास है। बोलिए कि नहीं, काश के हम अपने दैनिक जीवन में पाए जाने वाले विश्वास के द्वारा स्वतंत्र किए जाएं, अपने विश्वास को देखने के लिए, अपने विश्वास योग्यता को देखने के लिए जो हमारे जीवन के प्रत्येक हिस्से में विस्तृत हो रहा है। यह तब हो रहा है जब स्पष्ट रीति से अजय हालातों में भी परमेश्वर पर जो कहते हैं मैं हूं, वह वास्तव में वही है। वह अपने विश्वास को स्थिर रखते बनाए रखते हैं, वह विश्वास करते हैं जैसा परमेश्वर कहते हैं वैसा वह करते भी हैं, चाहे जीवन कितना भी अच्छा या बुरा हो जाए, हम फिर भी विश्वास करते हैं कि परमेश्वर धर्मी है। हम आज भी यह विश्वास करते हैं कि परमेश्वर न्यायी है। चाहे मैं कुछ भी देखूं या कुछ भी सुनूं, मैं फिर भी विश्वास करता हूं कि परमेश्वर के मार्ग सबसे उत्तम है और संसार के मार्ग सबसे बदतर हैं। तो इस प्रकार का विश्वास हमें संसार के बंधनों से स्वतंत्र करता है और यह हमें इस बात के भय से भी स्वतंत्र करता है कि विद्यालय में लोग हमें स्वीकार करेंगे या नहीं, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर को जानना दोस्तों को जानने से भी मधुर अनुभव है। इसी किस्म का विश्वास जवान बालिकाओं को स्वतंत्र करता है। जी हां, उन्हें तंग परिधान पहनने से जिनसे कोई लाभ नहीं होता सिवाय उनके तन के अपमान के स्वतंत्र करता है, क्योंकि अब वह समझने लगी है कि धार्मिकता के परिधानों और महिमा के गहनों से सुसज्जित होना सबसे उत्तम बात है। पहला तिमोथियस 2:9, जय बालकों एवं जवान युवकों को यौवन की हिंसक प्रवृत्ति से भी स्वतंत्र करने वाला विश्वास है, ताकि वह इससे खरे उतरे, इसलिए कि वह मानने लगे हैं कि यौवन आलिंगन क्रिया का असली आनंद विवाहित जीवन में ही है। इस प्रकार विश्वास है जो हमें इस संसार की वित्तीय सुरक्षा संचय करने से भी स्वतंत्र करता है, और इस प्रकार की कोई धारणा है भी नहीं, परंतु फिर भी हम संसार में देखते हैं और हमारे अंदर भी संघर्ष चल रहा है। हमारे पास बड़ा घर हो, अधिक खेल खिलौने हों और एक से बढ़कर एक ऐशो आराम की चीजें हों, परंतु जो विश्वास हमें इस प्रकार की बातों से स्वतंत्र करता है, वह इब्रानियों 11 अध्याय के अनुसार यह बताता है, नहीं हम तो परदेशी और यात्री हैं, हम तो स्वर्गीय घर की खोज में हैं, यह संसार मेरा घर नहीं है, मैं तो एक यात्री के सदृश आगे बढ़ता जा रहा हूं। हम इन बातों पर विश्वास करते हैं, यही सब है जिससे हम जानते हैं कि सत्य है। इसके बावजूद भी संसार हमें लुभाता है, हम कह उठते हैं परमेश्वर के मार्ग सबसे उत्तम है और यह संसार परमेश्वर की महिमा हो। यह संसार हमारा घर नहीं है, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, मैं नहीं सोचता कि मुझे नए जरूशलम और नए स्वर्ग की आवश्यकता है। यकीन मानिए, दिल खोल कर कह रहा हूं, मैं जहां से जाना चाहता हूं, मैं तो घर जाना चाहता हूं। यही तो विश्वास का कार्य है। विश्वास आपको स्वतंत्र करता है जब आप जख्मों, पीड़ाओं, निराशाओं और जीवन के दुखों के उस पार देख सकते हैं। यह हमें इस सीमा तक स्वतंत्र करता है जब हम हबाकू के साथ इस बात को देख सकें, जिसे वह अधर्म, विनाश, हिंसा आदि नामों से संबोधित करता है, और हमारा विश्वास कहता है परमेश्वर आज भी वही है जो वह कहता है, वह धर्मी और न्यायी है, और हमारा विश्वास पुकार उठता है परमेश्वर जो कहते हैं उसे पूरा करेंगे। वे इसे तब करेंगे जब वे करने के लिए तैयार होंगे। वह धर्मी को प्रतिफल देंगे, दुष्टता को दंडित करेंगे। वर्तमान समय में यीशु मसीह एवं परमेश्वर के आत्मा की सामर्थ के द्वारा मैं उनके प्रति विश्वास योग्य वफादार बना रहूंगा, अपनी आस्था के आधार पर जीता रहूंगा, कभी भी हिचकोले नहीं खाऊंगा, कभी भी भटकूंगा नहीं और सदैव ईमानदार बना रहूंगा। हबाकूक का प्रश्न एकदम आसान है या बहुत ही सरल है, क्या आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? यही हबाकूक का प्रश्न है, क्या आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? क्या आप अपने दैनिक जीवन में उसके प्रति वफादार रहेंगे? प्रतिदिन पीड़ा, अनिश्चितता में, प्रतिदिन के ऐशो आराम व प्रत्यक्ष सुरक्षा में क्या परमेश्वर को पुकारेंगे? चाहे अंजीर के वृक्षों में फल ना लगे, ना दाखलताओं में फल लगे, चाहे खेतों में अन्न ना उपजे, बेड़शालाओं में बेड़ बकरियां ना रहें, ना थानों में गाय बैल हों। दूसरे शब्दों में यह कहा जाए कि चाहे हालात कितने भी बदतर क्यों ना हो जाएं, परमेश्वर चाहे कितने भी खराब पड़े क्यों ना आ जाए, चाहे वे हमारे खेतों का कुछ भी क्यों ना कर दें, चाहे वे हमारे पशुओं के साथ कैसा भी व्यवहार ना करें, यह कृषि संबंधित आर्थिक परिस्थिति है कि नहीं, और फिर भी मैं परमेश्वर में आनंदित होऊंगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर में मगन रहूंगा। हबाकूक की पुस्तक में यह प्रश्न है, क्या आपके और मेरे अंदर विश्वास है? क्या आप और मैं प्रतिदिन विश्वास योग्य जीवन जी रहे हैं, चाहे संसार हम पर कैसे भी वार करे? आइए प्रार्थना करें। हे परमेश्वर पिता, बुराई की समस्या मूल समस्याओं में से एक है जिससे हम सभी संघर्ष कर रहे हैं। इस बात का हम अंगीकार करते हैं, और यह संघर्ष इसलिए क्योंकि हम पीड़ा, दुख, चोट और हमारे चारों ओर अनर्थ को होते हुए देखते हैं। यह सब झेलना बहुत ही कठिन है पिता परमेश्वर, यह सब समझना भी कठिन है, फिर भी पिता परमेश्वर विश्वास के द्वारा हम मानते हैं कि आप धर्मी परमेश्वर हैं, आप न्यायी परमेश्वर, आप भले परमेश्वर, आप सामर्थी परमेश्वर हैं। हे पिता, जे सच्चाइयां हैं जिन पर हम विश्वास करते हैं और इन्हीं सच्चाइयों को हम सबसे अधिक पकड़े रहते हैं। हे पिताजी, जब सोमवार को हम कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं, ऐसा मंगलवार को भी हो सकता है, जब हम यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से सौम्य वस्त्र हम धारण करें और किस प्रकार के हास्य चुटकुलों को सुनाएं, अपने कार्यस्थल पर कितना कठिन परिश्रम किया जाए, जैसा मन भावनी बातें हैं जिन्हें करने के लिए आपने हमें बुलाया है। सबसे प्रथम और महत्वपूर्ण बात तो यह है हे पिताजी कि हम आपके प्रति वफादार रहें, जो भी हम कहते और करते हैं, और वह सब जो हम कहते नहीं हैं या ना करते भी नहीं हैं, उन सब में हम आपके नाम को महिमा दे सकें और वफादार बने रहें, जो हमारे विश्वास की निश्चयता और आप पर हमारा भरोसा और विश्वास है उसमें हम स्थिर रहें। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। स्वतंत्र होने का आनंद ही कुछ और है, और इससे हम यह परवाह नहीं करते कि संसार हमारे विषय में क्या सोचता है। स्वतंत्र हो जाने के अनुभव होने के उपरांत यह मालूम हो जाता है कि हम तो यहां पर क्षणिक हैं। हमें हमारे परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य होने की आनंदमय जिम्मेवारियां मिल गई हैं, और मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं कि आप सताव के दौरान संसार में जाएं, संघर्ष का सामना करें, इन पर हंसिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान सामर्थी है। और क्या सोचिए, वही विजयी होगा। मैंने अंतिम पुस्तक पढ़ी है, हमारी विजय होगी और वह पराजित होंगे, और इस विश्वास की निश्चयता के साथ आगे बढ़िएगा।